ये आकाशवाणी है, अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन से बात की और ईरान तथा इसराइल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। राष्ट्रपति पेजिशकिन ने प्रधानमंत्री मोदी को विस्तार से जानकारी दी और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति और मानवता के साथ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षित स्वदेश वापसी में निरंतर समर्थन के लिए राष्ट्रपति पेजिशकिन को धन्यवाद दिया। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमरीकी सेना को लेकर के हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुनिया भर के नेता संयम बरतने और कूटनीतिक वार्ता की पैरवी कर रहे हैं। साथ ही यह भी चिंता जताई जा रही है कि यह संघर्ष पश्चिम एशिया में व्यापक रूप ले सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए कल एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमरीकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाजों के प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि कल सुबह वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। तुर्की के इस्तांबुल में आज एक सम्मेलन में रूसी संवाददाता के सवाल के जवाब में अराक्ची ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं और हर स्थिति में एक दूसरे से परामर्श करते हैं। इस बीच ईरान के मशाद से आज एक विशेष उड़ान कुल 311 भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अभी तक ईरान से 1428 भारतीय नागरिक सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। इस प्रयास के लिए लोगों ने सरकार को धन्यवाद किया।
धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी एम्बेसी को, जो हम लोग बेचारे हमारे पीछे दिन रात लगे रहे, और हमारी मोदी सरकार का जिंदाबाद।
थैंक यू इंडिया एंड थैंक यू इंडियन एम्बेसी, दे हेल्प्ड अस अ लॉट इन एवरी सिचुएशन, दे वर विद अस इन एवरी सिचुएशन, ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम।
ईरान में तकरीबन 2 साल रहते हुए वहाँ पे मैं मेडिकल की पढ़ाई करता हूँ, तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। मैं सरकार का काफी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
इस बीच ईरान में भारतीय नागरिकों को तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। दूतावास में 24 घंटे वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में भी 24 घंटे चलने वाले टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 800-1118797 और 1123-01213 जारी किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक सभ्य समाज में हिंसा और लाल आतंक का कोई स्थान नहीं है, इसलिए सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। गृहमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी परिसर के भूमि पूजन समारोह के दौरान मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने का सरकार का संकल्प दोहराया।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था कि 31-3-2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।
लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम की कुल बढ़त 96 रन हो गई है। कप्तान शुभमन गिल के नाबाद 6 रन और केएल राहुल नाबाद 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 465 रन पर सिमट गई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में कल तक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बाकी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।